Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ananta Shri Bhushita Pratasmaraniyo Shrotriya Brahmanishtha Mahamandaleshwar स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्रातस्मरणीय महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए प्रिय आनंद रूप मधुबाबू जी धीरीवाला जी समस्त साधक जन श्रोताजन बालक नचिकेता के लिए आचार्य यम ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहीण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। उन्होंने कहा उस परमात्मा का वाचक ओम है, भगवान का सबसे पहले नाम ओम। तस्य वाचकः प्रणवः, पतंजलि ने भी कहा है। उस आत्म तत्व के लिए आत्मा कहो ब्रह्म कहो अनेकों नामों से आप जानो, लेकिन पहला जो नाम है वैदिक नाम वो ओम है। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या करना चाहा, पहले तो भगवान को जानना चाहा, अपना मूल उद्गम कौन है, लेकिन जान नहीं पाए। उन्हें शब्द सुनाई दिया तप 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 करो, समझ गए कि अपने को तप करना है। तपसा एव विजानीयात्, आपको तत्व को जानना है तो तप के बिना उस तत्व को जानना संभव नहीं है। शास्त्र में लिखा है, श्रुति कहती है, तपसा एव ब्रह्म विजानीय। बिना तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, बुद्धि का तप, शरीर का तप के बिना, अंतकरण चित्त की शुद्धि हुए बिना उस तत्व को जानना संभव नहीं। ब्रह्मा जी समझ गए कि अब तपस्या करना है, साधना आराधना करनी है, लेकिन साधना आराधना के लिए आधार तो चाहिए। कोई मंत्र, कोई यंत्र, कोई मार्ग तो चाहिए, बिना मार्ग साधना भी कैसे करें। तो जैसे ही उनके मन में साधन को पाने की जिज्ञासा पैदा हो गई, उसी समय ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भीत्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका उभौ। ओंकार और अथ शब्द उनके हृदय में प्रकट हो गया, वो भगवान की कृपा थी। जैसे ही उनके मन में साधन मार्ग को पाने की व्याकुलता पैदा हो गई और भगवत कृपा से उन्हीं के हृदय में दो शब्द प्रकट हो गए, ओंकार और अथ। कंठम भीत्वा विनिर्यातो, और वो बाहर भी निकल पड़े, मन में प्रकट हुए और उसके बाद कंठ का भेदन करते हुए मन वाणी से निकल पड़े ओम और अथ। और इसीलिए आदि भगवान के नाम है ओंकार और अथ। इसलिए ओंकार को और अथ को मंगलमय माना जाता है, मंगलमय प्रभु का नाम। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने ओम इस नाम का जप किया, हजारों वर्षों तक ऐसा कहा जाता है ओम ओम ओम। और वही उनकी प्रणव की साधना, जो प्रथम परमात्मा का वाचक शब्द पवित्र मंगलमय स्वतस्फूर्त स्वयंभू, और उससे फिर साधना पूरी होने के बाद उसी साधना के द्वारा उन्हें उनमें संपूर्ण सृष्टि के निर्माण का सामर्थ्य आ गया। उसी मंत्र का मंत्र जबकि साधना का फल था, सृष्टि के निर्माण का सामर्थ्य आया, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि बेटा तुम सृष्टि को निर्मित करो, प्रजा सृज इति। यही कारण है भगवान का सर्वप्रथम जो नाम है वो ओम है, और उस ओम की महिमा का गान करते हुए, उसका महात्म्य बताते हुए आचार्य यम कह रहे हैं, सर्वे वेदा यत पदम आमनन्ति। वो जो ओंकारार्थ आत्म तत्व है, जिस परमात्मा का ओम ये नाम है, बीज मंत्र हैं, आपके जितने भी भगवान के मंत्र हैं ये सब ओंकार के लगने से बनते हैं। आप पढ़ते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम आ गया, ओम कृष्णाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम गणेशाय नमः, संपूर्ण मंत्रों का बीजाक्षर है ये ओम। और सर्वे वेदा यत पदम आमनन्ति, संपूर्ण वेद जिसका मैंने उल्लेख किया, कांड त्रयात्मक जो वेद हैं, कर्म उपासना और ज्ञान विधेया, उसी तत्व का प्रतिपादन करते हैं, उसी आत्म तत्व का प्रतिपादन करते हैं। और तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति, तपांसि तप करने के लिए कहा जाता है, बहुत सारे तप हैं, जैसे शरीर का तप है, शरीर को भी हम कष्ट देते हैं भगवान के लिए, शरीर को कष्ट देने से भगवान नहीं मिलते, आप ध्यान देंगे। तीन प्रकार का तप माना गया, शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप। इस शरीर को कष्ट देने का अर्थ ये नहीं है कि आप इसको सुइया चुभाते रहो या कांटों पर चलते रहो या भूखे रख करके इसको मारो, ये तप नहीं है। तप माने सद उद्देश्य से जब आप क्रिया करते हैं, आप भगवान की साधना करते हैं, उस समय अपने शरीर को कष्ट होता है और उसी को यहां तप बोला है। आप सत्संग करने के लिए बैठे हैं, तो बैठे हैं तो कई बार घुटने में दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है, और उस समय आप सहन कर लेते हैं। उस समय आपको ऐसा नहीं लगता है कि चलो टांग फैलाए या लेट जाए, कैसे भी हो बैठे रहते हैं आप। आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको क्षुधा जन्य जो पीड़ा है आप उसको सहन कर लेते हैं, तो ये तप है। आप परमात्मा को पाने के लिए जो साधना करते हैं और उस साधना के समय जो भी आपको कष्ट होते हैं उसी को तप बोला है। सामान्य जो हमारे ऊपर कष्ट आते हैं इसको तप नहीं कहते हैं, सदुद्देश्य से। आप जैसे मान लो कि आप चारों धाम की यात्रा पर चल पड़े, और चारों धाम यात्रा कोई सरल थोड़ी है, वो तो बहुत कठिन है। अभी हम लोग पिछले साल तुंगनाथ गए थे, वो सबसे ऊंचाई पर है भगवान शंकर जी का मंदिर, चारों धाम जितने भी आपके हिमालय के तीर्थ हैं सबसे ऊंचाई पर माना जाता है तुंगनाथ। वहां से यदि बादल साफ हो तो आपको चाइना का बॉर्डर दिखाई देता है। आप इतने हाइट पर जब आप पैदल चलेंगे तो आपको कष्ट होगा कि नहीं? बहुत कष्ट है, एक एक कदम ऐसा लगता है कि मानो पहाड़ उतर रहे हैं। चढ़ते समय तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती, उतरते समय बहुत कठिन होती, चढ़ना सरल है, आप चढ़ तो जाए, लेकिन उतरते समय बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि उतरते समय आपके पैरों पर सारा वजन आ जाता है, बहुत कष्ट है। अब आपको सहन करना है, वो कष्ट आप सहन कर रहे हैं वो तप है। वो तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति, शारीरिक जितने भी तप हैं उसका विधान शास्त्र ने किया, किसके लिए? जिस परमात्मा को पाने के लिए। और मानसिक तप, आप ध्यान कर रहे हैं, आप श्रवण मनन कर रहे हैं, वो भी कोई कम सरल थोड़े हैं। आप बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उसी समय विक्षेप आ गए और वो विक्षेप आपको कष्ट दे रहे हैं। मन कहेगा आपको ये करो और आप कहेंगे कि नहीं नहीं हमको यही करना है। मान लो आपने नवरात्रि का व्रत लेके बैठे हैं, बाहर नहीं जाना है। मन बोलेगा जाओ बाहर, चलो घूमो फिरो। मानसिक कष्ट जो है, बहुत प्रकार के विक्षेप, कामादि विकार हमारे मन को तपा देते हैं। ये तपना है, मन को तपाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इच्छाएं पैदा होने के बाद भी, सांसारिक इच्छाओं के पैदा होने के बाद भी, उन इच्छाओं को अपूर्ण नहीं करने का जो प्रयत्न है वो भी एक बहुत बड़ा तप है। आपका मन कहेगा भोजन करो और एकादशी का दिन है, बोलेगा खाओ आज बहुत बढ़िया भोजन बनाए, अगले बार एकादशी करेंगे। मन बोलता है अरे छोड़ो ये एकादशी, ये तो इस बार तो बहुत अच्छा भोजन बनाए, भंडारा है, अगली एकादशी करेंगे। और मन बड़ा बहुत अच्छे तर्क देता है, वो बोलेगा अगली एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अनेक तर्क देगा आपको मन, और उस समय मन में बहुत कष्ट होता है खाने के, ये वासना जो है ना बहुत बड़ी पीड़ा है, इच्छा पैदा होना है बहुत बड़ी पीड़ा, वेदना है। लेकिन उस समय आप उस वेदना को सहन कर ले, कितना भी आपका मन बोले खाओ लेकिन बोले नहीं खाना है, आपने उसको सहा कि नहीं, ये सहना भी तो तप है, ये मानसिक तप। आपने तुकाराम महाराज जी का उदाहरण सुना है, तुकाराम महाराज जी को एक बार इच्छा हुई सेवई खाने की, उन्होंने अपनी पत्नी को बोला जीजाबाई को कि हमको सेवई खाना है। लेकिन आश्चर्यचकित हो गए तुकाराम महाराज जी, बोले ये मन मानता ही नहीं, बार बार सेवई खाना सेवई खाना, सुबह से शाम तक बहुत समझाया। अरे बोले भैया बहुत हो गया, आप खा लिया बंद करो, अब भगवान का भजन करो, मान ही नहीं सेवई सेवई। जीजाबाई को बोला कि उन्होंने कि बहुत ज्यादा बनाओ, बहुत पेट भर के खाओ, बड़ी अद्भुत घटना है उनकी। जब वो सेवई खाने के लिए बैठे तो आपको तो बड़ा वो विभत्स मालूम पड़ेगा, पेट भरा उनका, पेट भरने के बाद भी अपने मन को बोलने लगे खा लो भैया और खाओ और खाओ और खाओ, और इतना ठूसने लगे वो उल्टी हो, और उसके बाद भी बोल रहे थे कि खाओ और अंदर से मन ने बोला, हाथ जोड़ा मन ने, बोले अब कभी नहीं खाऊंगा मैं, अब हमारे साथ ज्यादती मत करो, बोले तो ये तप है, ये मन के विकारों को मानना और मन की हर इच्छाओं को पूरा न करना और उससे जो कष्ट होगा वेदना होगी, ये बहुत बड़ा तप है। इसलिए जगह पर लिखा किसी साधक ने कि बोले हम तो युद्ध करते हैं बाहर दुनिया से और अंदर मन से, अंदर मन भी तो हमें बहुत परेशान करता है, लेकिन उसकी परेशानी को सहन करना। बुढ़िया बाबा जी महाराज जी कहा करते थे सबसे बड़ी तपस्या क्या, सबसे बड़ी सिद्धि क्या है, बोले सबसे बड़ी सिद्धि तो सहन करना है बस। कोई भी बात अपने मन में आई, वासना आए, विकार आए, बोलने की सोचने की इच्छा हुई, मन में संकल्प उठे कामना के, विकार के, जलन घृणा ईर्ष्या के, और उस समय उसको दबा दे, सहन कर दे, वो मन की बातें वाणी पर ना आने दे, मन की बातें इंद्रियों पर ना आने दे, क्योंकि मन में आई हुई बातें इंद्रियों पर प्रकट हो जाती हैं। मन में आई हुई बातें हमारे शरीर पर प्रकट हो जाती हैं, ये नियम है। पहले वासना मन में प्रकट हो जाती है, और मन में प्रकट हुई वासना मन में नहीं रहती, फिर वो शरीर पर प्रकट हो जाती है, वो आंख में आ जाती है, वो वासना हमारी वाणी पर आ जाती है, हाथ पैर में आ जाती है, पैरों में आ जाती है। खाने की इच्छा हुई और वो वासना पैरों में प्रकट हो जाती है, आपने घर में खाने की चीज नहीं, आदमी बोलेगा चलो नजदीक दुकान है जाके ले आएंगे, पैरों में प्रकट हो गई, लेने देने में प्रकट हो गई, आंख में प्रकट हो जाती है, टीवी देखने की इच्छा हुई तो आंख में प्रकट हो जाती वासना। फिर आदमी आंखें खोल के देखता है, टीवी खोलता है, वासना प्रकट होती है इंद्रियों पर। वासना प्रकट होती है हमारे शरीर पर। इसलिए साधक का अर्थ है उसको प्रकट न होने दे, इंद्रियों तक न आने दे। और कदाचित इंद्रियों में वासना प्रकट भी हो जाए तो उसको सहन कर ले। ये सबसे बड़ी सिद्धि है, सहन करना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। अपने मन में आता है कई बार, सामने वाले को डांट दूं क्या, फटकार दूं? कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगी, तो अच्छी नहीं लगी तो अच्छा नहीं लगना केवल मन में थोड़ी रहता है, वो वाणी में आना चाहता है, वाणी से प्रकट होना चाहता है और कठोर शब्दों में प्रकट होना चाहता है। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा काम क्रोध लोभ ये तीनों ज्ञानी के जीवन में भी होते हैं और अज्ञानी के भी जीवन में होते हैं, दोनों में अंतर क्या है? बोले ज्ञानी सहन कर लेता है और अज्ञानी सहन नहीं कर पाता है। ज्ञानी के मन पर भी वो तरंगे उठती हैं, लेकिन पानी के ऊपर लकीर खींचने की तरह, एक तरफ आप लकीर खींचो दूसरे तरफ लकीर समाप्त भी हो जाती, मालूम नहीं पड़ता, खींचने वाले को भी मालूम नहीं पड़ता है कि मैंने कौन सी लकीर खींची थी, उसको भी दिखाई नहीं देती लकीरों। लेकिन आप पाषाण के ऊपर लकीर खींचो तो, पाषाण के ऊपर लकीर खींचोगे तो वो लकीर स्थायी हो जाती है। ऐसे अज्ञानी जब क्रोध करता है तो स्थायी हो जाता है, अज्ञानी जब जलता है, घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, वो स्थायी हो जाता है मरने तक। आदमी मरते समय भी वो रागादि विकार नहीं भूल पाता है, वो जलन घृणा भूल नहीं पाता है, मरते समय भी बोल के जाता है भैया कि उसको देख के जान दिखाना, ठिकाने लगाना। मरते समय भी आदमी बोलता है कि उसको देख लेना, अब हम शांति से मरे, माने शांति से मरने के लिए भी उसको बदले की भावना वहां भी प्रकट है। मरते समय तक आदमी को ये चीजें छूटती नहीं है, यही तो अज्ञानी का लक्षण है। और ज्ञानी का तो मन में तरंग उठी एक तरफ और दूसरे तरफ खत्म, वो तन पर प्रकट नहीं होती है। भावना मन की तन पर प्रकट ही नहीं होने देता ज्ञानी, और इसी को बोलते हैं सहन करना। ये सबसे बड़ी सिद्धि है। उड़िया बाबा जी महाराज जी कहते हैं कि सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि मन में उठी हुई बात मन में ही समाप्त हो जाए, वो इंद्रियों पर तन पर प्रकट ना हो और वो दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंच जाए। और ये सबसे बड़ा ये तप है, ये मन का तप है, मानसिक तप है, ये मानसिक तप है सहन करना। और वाणी का भी तप है, वाणी का तप हम अपने जीवन के 99% दुख इसी वाणी से निर्मित करते हैं। आप सुबह से शाम तक देखना, अपने परिवार में, अपने घर में जितने भी उपद्रव पैदा होते हैं वो बोलने के कारण पैदा होते हैं, और सबसे ज्यादा हम प्रयोग इसी वाणी का ही तो करते हैं। जो नहीं बोलना है वो बोल देते हैं, जिस समय बोलना नहीं चाहिए उस समय बोल देते हैं, जैसे बोलना चाहिए वैसे नहीं बोलते हैं, जिसके साथ ऐसा बोलने का व्यवहार नहीं करना चाहिए वैसा हम कर देते हैं। बोलते समय देश का, काल का, व्यक्तित्व का, व्यक्ति का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हम कहां पर बोल रहे हैं, किस समय बोल रहे हैं, किसके साथ बोल रहे हैं और किस तरीके से बोल रहे हैं, सभी चीजें बराबर हैं लेकिन तरीका ठीक ना हो तो। अब वहां अंधे का पुत्र अंधा बोला द्रौपदी ने, अब आपकी दृष्टि से वो सही था कि गलत था? गलत था भाई, भले वो अंधा था, धृतराष्ट्र भी अंधे और वो दुर्योधन भी अंधा था, विवेक नहीं था, लेकिन वो प्रसंग बोलने का नहीं था, वो तो गिर गया था ना, वो सहानुभूति का समय था। कोई आदमी गिरे तो आप उसको उठाओगे कि गिराओगे? भाई कोई आदमी गिरा तो उसको सद्भावना देना चाहिए था, सहयोग देना था, सांत्वना के शब्द बोलने थे। लेकिन द्रौपदी इतनी समझदार है, बहुत समझदार है। आप पांचों पांडवों को देखना, समझदारी के मामले में द्रौपदी सबसे ज्यादा है। वो पांचों पांडवों को संभालती है, पूरे परिवार को संभाल रही हो, बहुत बुद्धिजीवी है। लेकिन उस समय चूक गई हो, जो अंतर मन में वेदना थी, दुर्योधन के प्रति द्वेष की भावना थी, प्रकट हो गई। और उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये तो अंधे का पुत्र अंधा, और उसको ये भी नहीं मालूम था कि सुन लेगा। ऊपर छत के ऊपर थी और वो नीचे घटना घटी थी रोड पर। कान बड़े तेज थे दुर्योधन के। आदमी जो सुनना चाहता है ना वो सुनता है। हमारी यदि प्रवृत्ति हो तो उस दिशा में हम अग्रसर हो जाते, एकाग्र हो जाते हैं। हम जो सुनना चाहते उसके तरफ हम एकाग्र हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सुनना चाहते तो हम कान लगा लेते हैं, काम कहीं और करते हैं, लेकिन हमारा पूरा जो कान होता है वही होता है, ध्यान वही होता है, क्योंकि वो सुनना चाह रहे हैं। और दुर्योधन का पूरा ध्यान था ऊपर वाले, जैसे गिरा कि नहीं, मुझे ध्यान गया कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया हो रही, और उसने सुना अंधे का पुत्र अंधा। उस समय ठीक नहीं था। और वो एक शब्द नारायण वो कितना भयंकर बना। महाभारत के युद्ध का जो प्रारंभ था उसी उक्ति में था, अंधे का पुत्र अंधा। और ये सुना दुर्योधन ने, और दुर्योधन सोचने लगा कि गाली मेरे को नहीं दी, मेरे को दी होती तो सहन कर लेता, मेरे को अंधा बोला होता तो सहन भी किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने मेरे को अंधा नहीं बोला, मेरे पिता को गाली दी उसने, अंधा बोला, अंधे का पुत्र अंधा, माने पिता का अपमान। उसका निजी अपमान होता तो सहन भी कर लेता, लेकिन पिता तक गाली पहुंचा दी। और उसने उसी दिन संकल्प किया कि अंधे का पुत्र अंधा क्या होता है मैं दिखा दूंगा। वो जो चीर हरण का प्रसंग है ना, वस्त्र हरण, वो वस्त्र हरण का प्रसंग भी उसी से निकलता है। जब वो अंधे का पुत्र अंधा तो उस समय भी आक्रोश था, अच्छा तुमने अंधा बोला था मैं, अब तो तुम दासी हो गए ना मेरे। इसलिए शब्द जो है, शब्द जन्य जो पीड़ा, वो आदमी कभी नहीं भूलता है। इसलिए आपको कभी बोलना भी होना तो वाणी का संयम करना बहुत जरूरी है। वाणी का संयम बहुत जरूरी, जैसे बोलना नहीं चाहिए, जो वाक्य बोलना नहीं चाहिए वो बोलना ही नहीं चाहिए। आपके मन में कितना भी आक्रोश हो, किसी के प्रति द्वेष हो, जलन हो, घृणा हो, लेकिन व्यक्त करते समय शब्द संयम बहुत जरूरी है। व्यक्त करते समय शब्द संयम यदि आप नहीं करेंगे, जो भी शब्द निकले वो आप बोलेंगे तो आप और अनर्थ पैदा करेंगे। आपके बोलने में, शब्द के प्रयोग में संयम होना बहुत जरूरी है। आप बोलिए लेकिन बोलने में संयम होना चाहिए, बोलने में सभ्यता होनी चाहिए। ऐसी सभ्यता के सामने वाले को मार्ग मिले और वो जले नहीं। सामने वाला मानो क्रोध ज्यादा करता है तो आप बोलिए, लेकिन बोलने का तरीका होना चाहिए। सामने वाले को एहसास दिला दीजिए कि हम गलत कर रहे हैं। इसलिए यह वाणी का तप है, माने शब्द उपयुक्त और संयम में प्रयोग करने का ही नाम यह वाणी का तप है। अरे बहुत महत्वपूर्ण तप है, यहां कई प्रकार के अनर्थ पैदा करता है, हमारे अंदर अदृष्ट पैदा करता है, हमारे अंदर द्वेष पैदा करता है। एक बार मैं आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी के कुलपति को एक बार सेमिनार था, तो उस सेमिनार में बहुत से पूरे भारतवर्ष के लोग आए हुए थे, तो हमको भी ऐसे इनवाइट किया था उन्होंने, नाम भूल गया मैं, तो उनको मैंने एक चीज बोली, उन्होंने एक बात बोली कि महाराज मैं बहुत गरीब घर का था लेकिन मैंने परिश्रम किया और इस पद तक पहुंचा, आप लोगों का आशीर्वाद। तो मैंने उनको पूछा कि आप इस पद तक पहुंचे तो आप उसको किसको श्रेय देना चाहोगे? उन्होंने कहा कि माता पिता की कृपा है, भगवान की कृपा है, लेकिन मैंने दो चीजें हमेशा ध्यान रखी और वो दो चीजें ये थी। प्रथम चीज ये थी कि मैं कठोर पुरुषार्थ करूंगा, श्रम करूंगा, और दूसरी चीज मैं अपने विरोधी पैदा नहीं होने दूंगा। उन्होंने बड़ी गहरी बात बोली, मेरे को भी वो बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि अपने विरोधी पैदा ना हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आपके विरोधी पैदा होंगे तो वो विरोधी आपको काम ही नहीं करने देंगे ना, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप अच्छा काम करना चाहते हैं और आपने अपने व्यवहार से, आचरण से, बोलने से विरोधी पैदा कर दिए हैं। अब वो विरोधी आपके मार्ग में प्रतिरोध बन के आएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विरोधी लोग पैदा ना हो। आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा विरोधी पैदा ना हो, और उसके लिए आपको भी बहुत सावधानी से व्यवहार करना पड़ेगा। बोलना, उठना, बैठना, या कभी पीछे, पीठ पीछे नहीं बोलना। आदमी कई बार पीठ पीछे बोल देता है और बाद में मालूम पड़ता है सामने वालों को कि तुमको उसने बोला, और वो विरोधी हो जाता है। इसलिए विरोधी पैदा ना हो। आपको भजन करना है, आपको अपने घर में भजन करना है, आश्रम में भजन करना है, तो ध्यान देना चाहिए कि आपके विरोधी पैदा ना हो। और यदि विरोधी पैदा हुए तो वो आपको भजन ही नहीं करने देगा। वो बोलेगा आप भजन करोगे और हम काम करेंगे। वो बोलेगा पहले काम करो बाद में भजन करो। आपको सत्संग में आने ही नहीं देगा, आपका समर्थक नहीं होगा, वो विरोधी होगा। तो किसी भी दिशा में उन्नति को प्राप्त करना है तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विरोधी पैदा ना हो। और आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत जरूरी है। अभी सभी लोग तो हमारे जैसे सन्यासी तो होते नहीं, सर्वस्व का परित्याग कर वन में गए। अरे वन में भी गए तो आश्रम में भी रहना पड़ता है, आश्रम में भी विरोध पैदा हो तो। मान लो कि आश्रम में विरोध पैदा हो गया, आपके व्यवहार से विरोध पैदा हो गया, आप बैठो ध्यान में, आप लगेगा ध्यान, आप जप करने के लिए बैठो तो आप करेंगे कि नहीं? जप कहां से जप होगा? आप जप करने के लिए बैठेंगे और वो विरोधी आपको याद आएगा, उस विरोधी के द्वारा किया गया विरोध याद आएगा। भगवान बुद्ध के पास एक कोई साधक साधना करने के लिए आया। बुद्ध ने कहा भैया सब कुछ तुम छोड़ के साधना करो, मन में जलन, प्रतिशोध, घृणा, अरे बोले सब कुछ भुला देना। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ भुला चुका हूं और अब साधना करना चाहता हूं। बुद्ध ने साधना विधि बता दी, ध्यान में बैठ गए। बुद्ध अब वो बन गए, भिक्षु बन गए थे और वो साधना करने लगे। साधना करते करते उनको याद आ गई पुरानी, और वो पुरानी याद थी अमुक आदमी ने मेरा अपमान किया था, वो क्षत्रिय थे और ये भी क्षत्रिय, और इतना आक्रोश आया उनके मन में, इतना आक्रोश आया, ध्यान कर रहे हैं और वो प्रतिशोध की भावना इतनी, और उस समय वो तलवार ढूंढने लगे। अब वो भिक्षु बने हैं, सिर मुड़ा रखे हैं, गंजे हो गए हैं, और वो उस समय तलवार ढूंढने लगे। बुद्ध ने देखा, अरे बोले क्या ढूंढ रहे हो तुम? आंख खोली और उन्हें कहा मैं तलवार ढूंढ रहा हूं। बोले क्यों? बोले उस आदमी ने मेरा अपमान किया था, बोले उसको मैं मारना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा कि तुम भिक्षु बन चुके हो और ये प्रतिशोध की भावना तुमको छोड़नी पड़ेगी। तुम ये प्रतिशोध की भावना नहीं छोड़ोगे तो तुम ध्यान नहीं कर पाओ। आप ध्यान में बैठे हैं और आपका कोई विरोधी आपके सामने आ जाए तो आप उसको क्षमा नहीं कर पाओगे।